पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
अर्पा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिता सिंह का व्याख्यान।
आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें।
आज हम एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। एरिक एरिक्सन एक ऐसे अमेरिकी मनोविश्लेषक हैं जिन्हें अहम मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ था और निधन 1994 में हुआ। उन्होंने विकास के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली सिद्धांतों की नींव रखी। एरिक्सन के सिद्धांत का मुख्य केंद्रबिंदु मनोसामाजिक विकास ही था। मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में एरिक्सन का मानना है, व्यक्तित्व का विकास श्रृंखलाबद्ध रूप में व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। यह सिद्धांत मनुष्य के संपूर्ण जीवन विस्तार में सामाजिक अनुभवों के प्रभावों पर बल देता है, जिनसे व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है। एरिक्सन का यह सिद्धांत व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक समाज, अभिभावक एवं अन्य बाहरी कारकों के प्रभाव को स्पष्ट करता है। यह प्रभाव ही व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एरिक्सन अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में मनुष्य के व्यवहार के विषय में कुछ पूर्व अवधारणाएँ रखते हैं जो इस प्रकार से है। एरिक्सन का मानना है कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन पर्यावरण पूर्णता का बहुत अधिक महत्व है। दूसरी बात वो कहते हैं कि मनुष्य के अन्य पहलू जैसे विवेकता वस्तुनिष्ठता ज्ञान निर्धारण का महत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास कुछ पूर्व में निर्धारित अवस्थाओं से होकर गुजरता है जो सभी व्यक्ति में पाई जाती हैं अर्थात सार्वजनिक होती हैं। इस अवस्था को पश्चजात नियम या एपिजेनेटिक रूल भी कहते हैं। एपिजेनेटिक रूल के अनुसार मनुष्य के विकास के प्रत्येक अवस्था का एक निश्चित समय होता है और यह अवस्था मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक क्रमवार घटित होती है और इनमें व्यक्ति का विकास जैविक परिपक्वता सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के आपस में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होता है। मनोसामाजिक विकास की इन अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात उन्होंने बताई है कि प्रत्येक मनोसामाजिक विकास की अवस्था में एक संक्रांति या क्राइसिस होती है। संक्रांति से हमारा मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ उस अवस्था में जैविक परिपक्वता और सामाजिक परिस्थितियों दोनों की अंतःक्रिया के पश्चात व्यक्ति के जीवन में वो घटना उत्पन्न होती है। अर्थात वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर हमारी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी या जैविक परिपक्वता अर्थात अवस्था के आधार पर हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं, जो मैच्योरिटी विकसित होती है और जो सामाजिक परिस्थितियाँ हमारे साथ उसके साथ साथ जन्म लेती हैं, वो दोनों की अंतःक्रिया के पश्चात व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जिसका सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। उसे हम टर्निंग पॉइंट या अहम मोड़ कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। मानव विकास की इन अवस्थाओं में यदि व्यक्ति के जीवन काल में जैविक परिपक्वता एवं सामाजिक परिस्थितियों के अंतःक्रिया के कारण संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है और व्यक्ति उस संघर्ष की स्थिति का सामना करने में समर्थ होता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा संचरित होती है और नकारात्मक तत्व समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहती है और एक स्वस्थ मानव विकास का जन्म होता है। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था की संक्रांति को व्यक्ति को दूर करना होता है। यह तब संभव होता है जब व्यक्ति संक्रांति से उत्पन्न संघर्ष की स्थिति का समाधान कर लेता है। समाधान कर लेने के पश्चात व्यक्ति के जीवन में एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसे एरिक्सन ने सदाचार या विर्च्यू का नाम दिया है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति ने संक्रांति से उत्पन्न संघर्ष की स्थिति का समाधान नहीं ढूंढा तो उसके जीवन में मनोसामाजिक विकास की अगली अवस्था का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगली बात वो बताते हैं कि मनोसामाजिक विकास की अवस्था में 3R की चर्चा उन्होंने की है। 3R से हमारा मतलब है, एक होता है कर्म कांडता राइचुअलाइजेशन, दूसरा कर्म कांड राइचुअल, और तीसरा जो है कर्म कांडवाल राइचुअलिज्म। कर्म कांडता क्या है, इसे हम समझने की का प्रयास करते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज की विभिन्न संस्कृति परंपराओं को अपनाता है। वह समाज के अन्य व्यक्तियों से इन संस्कृति व परंपराओं की औपचारिकता को पूरा करने के लिए अंतःक्रिया करता है। ऐसा वह समय समय पर परिस्थिति के अनुसार कई बार करता है, जिससे वह समाज में अपने को अच्छे और संस्कारी व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सके, जिसका एक अनुकूल महत्व होता है। कर्मकांड से मतलब है वयस्क समुदाय या एडल्ट कम्युनिटी के द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कार्यों को किया जाता है और उसकी बार बार आवृत्ति भी की जाती है। कर्मकांडवाद से तात्पर्य होता है कि कर्मकांडता में यदि विकृति उत्पन्न हो जाए, अर्थात व्यक्ति समाज के मानकों और परंपराओं का निर्वहन नहीं करे, तो स्वयं केंद्रित व्यवहार का निष्पादन होता है और यह स्थिति कर्मकांडवाद कहलाती है। और पांचवी अवस्था उन्होंने बताई है कि प्रत्येक मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं का निर्माण उसकी पूर्व की अवस्थाओं के विकास से ही जुड़ा होता है। इस तरह एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया, 8 अवस्थाओं पर चर्चा की गई है। हम एक एक करके इन सभी अवस्थाओं पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एरिक्सन के द्वारा 8 अवस्थाओं की पहली अवस्था है शैशवा अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, इन्फेंसी स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यह अवस्था जन्म से 1 साल की उम्र तक चलती है। इस अवस्था में बालक में जो पहला धनात्मक अहम गुण विकसित होता है वो कहलाता है दूसरों तथा अपनों के प्रति विश्वास की भावना। बालक में यह विश्वास की भावना माता पिता की अच्छी देखरेख प्यार और स्नेह से विकसित होती है, जिसके कारण उसके अंदर यह विश्वास जागृत होता है कि वह जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने में शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में सक्षम है। इस तरह के आस्था व विश्वास के साथ बालक के अंदर एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसके विपरीत कई बार माता पिता अपने बच्चे के प्रति अच्छी देखरेख नहीं कर पाते, उनका स्नेह और लगाव उनसे बहुत अच्छे से नहीं रख पाते हैं। उनका व्यवहार बच्चों के प्रति अविश्वसनीय, चिड़चिड़ा या अनुपयुक्त होता है, जो बच्चे के मन में अविश्वास की भावना पैदा करता है। वह दूसरों के प्रति संदेह, डर जैसे अनुभव विकसित कर लेता है, जो उसके अंदर एक अस्वस्थ व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। शिशु उस स्थिति में ज़्यादा दुखित होता है जब वह यह महसूस करने लगता है कि उसकी माँ का ध्यान उस पर ना होकर किसी अन्य चीज़ों पर ज़्यादा होने लगा है। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में ज़्यादातर माता पिता दोनों ही नौकरी वाले होते हैं। वे अपने परिवार व बच्चे को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। शाम को जब वे काम से लौटते हैं तो थकानवश वो उनका व्यवहार चिड़चिड़ा सा हो जाता है, जो बालक के व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव नहीं डालता है और बालक का मन व्यथित हो जाता है। एरिक्सन का मानना है कि बालक के अंदर स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए विश्वास के साथ अविश्वास की भावना का भी सही अनुपात में होना आवश्यक होता है। अगली बात उन्होंने बताई है कि जब बालक विश्वास बनाम अविश्वास की भावना के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति साइकोसोशल स्ट्रेंथ का जन्म होता है, जिसे उन्होंने आशा का नाम दिया है। आशा से हमारा मतलब है ऐसी मनोसामाजिक शक्ति जो बालक के अंदर उसके अस्तित्व और वातावरण को समझने में मदद करती है और उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इस अवस्था में बालक के अंदर कर्मकांडता या राइचुअलाइजेशन को एरिक्सन ने दिव्य तत्व या न्यूमिनस एलिमेंट कहा है, क्योंकि बालक अपने माता पिता की उपस्थिति और साथ को एक दिव्य शक्ति के रूप में मानता है, इसलिए उन्होंने इसे दिव्य तत्व की संज्ञा दी है। कर्मकांड की अवस्था में वयस्क इस कर्मकांडता की आवृत्ति करते हुए अन्य व्यक्तियों के साथ इसे ज़्यादा आदर प्रेम स्नेह के आदान प्रदान के रूप में विकसित कर लेता है। कर्मकांडवाद में एरिक्सन ने इसे मूर्ति पूजन का नाम दिया है, जो कर्मकांडता में विकृति उत्पन्न होने पर बालक के अंदर विकसित होती है। यदि बालक को अपने माता पिता का स्नेह और उपस्थिति महसूस नहीं होती है तो वह उन्हें मूर्ति स्वरूप मानने लगता है और ऐसी स्थिति में वह स्वयं को महत्व देने लगता है, अपनी ही पूजा करने लगता है और उसे दूसरों पर विश्वास बिल्कुल नहीं रह जाता है। एरिक्सन ने जो दूसरी अवस्था दी है उसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। यह अवस्था 2 से 3 वर्ष तक रहती है। बालक अपनी मनोसामाजिक अवस्था में विश्वास को प्राप्त कर लेता है, तब वह दूसरी अवस्था में उसके अंदर स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण जैसे शील गुणों का भाव विकसित करता है। इससे पहले की अवस्था में बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता था, किंतु इस अवस्था में उसके अंदर परिपक्वता या मैच्योरिटी, शाब्दिक अभिव्यक्ति, वर्बल एक्सप्रेशन, सामाजिक विभेदता, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसी क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक प्रकृति, वातावरण का ज्ञान अपनी स्वतंत्र क्षमता से खोजना शुरू करता है। उसे अपने इस कौशल से परम आनंद की अनुभूति होती है। एरिक्सन के अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य यह नहीं है कि बालक को प्रत्येक कार्य को करने के लिए स्वतंत्र किया जाए, वरन स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि माता पिता अपने नियंत्रण में बालक को प्रत्येक कार्य को करने की स्वतंत्रता प्रदान करें, जिससे बालक के अंदर आत्मविश्वास का संचार हो सके। यदि माता पिता बालक को छोटा समझकर उसे कोई कार्य करने नहीं देते हैं, स्वयं ही उसका कार्य कर देते हैं, बालक की क्षमता से अधिक उससे कोई उम्मीद लगाते हैं, तो बालक के अंदर लज्जाशीलता की भावना विकसित हो जाती है। इसके कारण बालक में नकारात्मक गुण जैसे स्वयं पर शक करना, कमज़ोर, असहाय या शक्तिहीनता का गुण पैदा हो जाता है। जब बालक स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के संघर्ष का समाधान कर लेता है, अर्थात दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तब उसमें एक नई मनोसामाजिक शक्ति जन्म लेती है, जिसे एरिक्सन ने विल पावर या इच्छा शक्ति का नाम दिया है। इच्छा शक्ति से तात्पर्य है ऐसी शक्ति जो बालकों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी रुचिपूर्ण या पसंद का कार्य करने और आत्मनियंत्रण करने में समर्थ बनाना होता है। इस अवस्था में जो कर्मकांडता जन्म लेती है उसे विवेक सम्मत कर्मकांडता कहते हैं, अर्थात बालक अपने आसपास के सही और गलत वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की पहचान करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में जो कर्मकांड जन्म लेती है वो है कोर्ट रूम ट्रायल या न्याय विचार, अर्थात जिससे व्यक्ति के अज्ञानता और गलत कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस अवस्था में कर्मकांड बाद में विवेक सम्मत कर्मकांडता में विकृति उत्पन्न हो जाने पर विधिवादिता, लीगलिज्म जैसी कर्मकांडवाद की शुरुआत होती है, जिसके तहत व्यक्ति नैतिक जवाबदेही का ज्ञान भूल जाता है और उसके बिना ही कानूनी नियमों पर अड़ा रहता है। इससे उसके व्यवहार में कठोरता या रिजिडिटी आ जाती है। एरिक्सन ने जो तीसरी अवस्था की बात कही है वो उसका नाम है खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता, प्ले एज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यह अवस्था 4 से 6 वर्ष की आयु तक चलती है। यह वह अवस्था है जहां बालकों में भाषा व पेशीय कौशलों का विकास हो जाता है, बालक के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव विकसित हो जाता है और वह घर के बाहर निकलकर अन्य बच्चों के साथ खेलकूद करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे उनमें आनंद की अनुभूति विकसित होती है। बच्चे पहली बार यह अनुभव करते हैं कि समाज में उनका भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और उन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह वह अवस्था होती है जहां बच्चे समाज के कार्यों में सक्रिय होते हैं, उन्हें समाज अपनी सक्रियता व पहल शक्ति दिखाने हेतु चुनौती प्रदान करता है, वह दूसरों के कार्यों को करने में आनंद महसूस करते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी शुरू कर देते हैं। यदि माता पिता बच्चों को उनकी सामाजिक सहभागिता करने से रोकते हैं या इसके लिए उन्हें दंडित करते हैं तो बच्चे के अंदर दोषिता या गिल्ट का भाव जन्म लेता है। ऐसे बालक अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनमें जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने की क्षमता समाप्त होने लगती है। यदि बालक इसी भाव के साथ अधिक समय तक रहता है तो उसके अंदर कई मनोविकार जैसे निष्क्रियता या लैंगिक नपुंसकता जैसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। जब बालक पहल शक्ति बनाम दोषिता के संघर्ष का समाधान कर लेता है तो उनमें उद्देश्य नामक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। उद्देश्य से तात्पर्य है ऐसी शक्ति जो बच्चों के जीवन में निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता और उसे पूर्ण विश्वास तथा दृढ़ संकल्पता के साथ बिना डर के प्राप्त करने की हिम्मत प्रदान करती है। इस अवस्था में कर्मकांडता में जो जन्म लेती है उसे हम नाटकीय कर्मकांडता या ड्रामेटिक रेचुलेशन कहते हैं, जिसके कारण बालक किसी रंगमंच के माध्यम से अपनी क्षमता और अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। वयस्कावस्था में व्यक्ति अपने लिए उत्तम भूमिकाओं को करने का प्रयास करता है, ये कर्मकांड के रूप में उसकी पुनरावृत्ति होती है। और कर्मकांडवाद के तहत यदि बालक नाटकीय कर्मकांडता की अभिव्यक्ति सफल रूप में नहीं कर पाता है तो उनमें विकृति उत्पन्न होती है और उसके अंदर पर रूप धारण या इम्परसोनेशन जैसे कर्मकांड का जन्म होता है, जो उसे नेगेटिव रोल्स को या नकारात्मक भूमिकाओं को करने के लिए प्रेरित करता है। और इस रोल में वह अपराधी, ड्रग एडिक्ट जैसे नकारात्मक भूमिकाओं को निभाने हेतु मजबूर हो जाता है। एरिक्सन ने जो चौथी अवस्था की बात कही है उसका नाम है स्कूल अवस्था परिश्रम बनाम हीनता, स्कूल स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होती है और 11 से 12 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं और स्कूल में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं। साथ ही बालकों में आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एवं समाज के रीति रिवाज नियमों के अनुरूप अपने साथियों के साथ रिश्ते बनाने की क्षमता भी रखते हैं। जब बालक स्कूलों में अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर परिश्रम या इंडस्ट्री का भाव विकसित होता है। इस तरह के भाव से बालकों को स्कूल से, समाज के सदस्यों से, शिक्षकों से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यदि बालक किसी कारणवश संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है तो उनमें हीनता या इन्फीरियरिटी की भावना जन्म लेती है। हीनता का कारण यह भी हो सकता है जब बालक को उसके कौशल और क्षमता के आधार पर न माप कर उसे जाति प्रजाति के आधार पर मापा जाता है। हीनता का भाव पैदा होने से बालकों में अपनी क्षमता और योग्यता पर से विश्वास टूट जाता है। जब बालक परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तो उनमें एक नई मनोसामाजिक शक्ति जन्म लेती है जिसे सामर्थ्यता कहा जाता है। सामर्थ्यता या कॉम्पिटेंसी से मतलब होता है किसी कार्य को शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता का सही प्रयोग करते हुए पूरा करना। इस अवस्था में जो कर्मकांडता विकसित होती है उसे औपचारिक कर्मकांडता कहा जाता है, अर्थात बालक किसी कार्य को जब उचित ढंग से करता है तो उनमें गुणात्मक एवं कलात्मक गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में जो कर्मकांड विकसित होती है उसे कार्य का जन्म होता है, अर्थात बालक किसी भी कार्य को औपचारिक कार्यविधि से पूरा करना पसंद करता है, अर्थात वो कार्य को सिर्फ एक औपचारिक रूप करना पसंद करता है। इस अवस्था में कर्मकांडवाद जो विकसित होता है, यदि औपचारिक कर्मकांडता में विकृति उत्पन्न होती है तो औपचारिकता जैसे कर्मकांडवाद का जन्म होता है, जिससे व्यक्ति किसी कार्य को केवल पूरा करने की औपचारिकता करता है, उसे समझने का प्रयास नहीं करता है।
इस तरह हमने एरिक्सन की 4 अवस्थाओं पर आज चर्चा की। हम अपने अगले लेक्चर में एरिक्सन की शेष 4 अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा। गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता, कलुष निवारण सुयश संस्कृति रचे नए अभियंता।
नमस्कार,